एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
स्वागत।
आज हम आपको ले चलेंगे मध्ययुगीन जापान की एक ऐसी कहानी की दुनिया में जो सिर्फ आप कह सकते हैं इतिहास नहीं है बल्कि जिंदगी का एक गहरा फलसफा भी है।
हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं हेके की कहानी की, यानी हेके मोनोगतारी। ये एक महाकाव्य है, एक ऐसी दास्तान जो अब सोचे करीब 800 साल पुरानी है पर आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है, सोचने पर मजबूर करती है।
बिल्कुल, क्योंकि ये कहानी उन सवालों से जूझती है जो हमेशा से मतलब इंसानी फितरत का हिस्सा रहे हैं, जैसे कि सत्ता का नशा कैसा होता है, महत्वाकांक्षा कहाँ ले जाती है और क्या वाकई सब कुछ अस्थाई है, मतलब क्षणभंगुर।
सही कहा, ये सिर्फ समुराई योद्धाओं की लड़ाइयों का क्या कहते हैं लेखा जोखा नहीं है, ये तो शक्ति, पतन, वफादारी, धोखा, करुणा, इन सब की एक बहुत गहरी पड़ताल है और शायद यही इसे आज भी इतना जरूरी बनाता है।
ना
दस कहानी का कोई एक लेखक नहीं है,
है ना, कमाल की बात, मतलब कोई एक ऑथर नहीं बैठा था लिखने।
हाँ तो फिर ये कहानी हम तक पहुंची कैसे, कौन थे वो लोग?
ये पहुंची बीवा होशी के जरिए। ये असल में नेत्रहीन भिक्षु होते थे, वो गांव गांव शहर शहर घूमते थे और बीवा नाम का एक खास जापानी साज, एक तरह का ल्यूट होता है, उसे बजाते हुए इन कहानियों को गाकर सुनाते थे।
अरे वाह, गाकर सुनाते थे।
हाँ गाकर, तो सोचिए पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानी जुबानी तौर पर चलती रही, सुनाई जाती रही।
तो मतलब ये किसी एक इंसान का नजरिया नहीं हुआ फिर, ये तो एक तरह से पूरे समाज की उस वक्त की सामूहिक याददाश्त जैसी हो गई जो इन घुमंतू कथावाचकों के जरिए जिंदा रही।
बिल्कुल सही पकड़ा, इसमें इतिहास भी है, लोक कथाएं भी हैं और हाँ उन भिक्षुओं का अपना बौद्ध दर्शन भी इसमें घुलमिल गया होगा जरूर।
अच्छा तो ये एक सामूहिक रचना है, इसमें सच्ची ऐतिहासिक घटनाएं भी हैं, किंवदंतियां भी और गहरे दार्शनिक विचार भी।
बिल्कुल, और शायद इसीलिए इसकी आवाज इतनी सच्ची और असरदार लगती है। ये किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक पूरे युग की आवाज है, ये इसे एक अलग ही वजन और कह सकते हैं सच्चाई देती है।
समझ गई। तो अब जब हमें पता चल गया कि ये कहानी बनी कैसे, जरा इसके अंदर झांकते हैं। आखिर ये कहानी है किस बारे में, इसका सार क्या है?
मूल रूप से ये कहानी 12वीं सदी के जापान की है। उस वक्त दो सबसे ताकतवर समुराई खानदान थे, तायरा जिन्हें हेइके भी कहते हैं और मिनामोतो जिन्हें गेंजी कहा जाता है। तो ये उन दोनों के बीच सत्ता के लिए हुए जबरदस्त संघर्ष की दास्तान है।
अच्छा, तायरा और मिनामोतो, हेइके और गेंजी।
हाँ, और कहानी का फोकस खासकर हेइके कबीले पर है, कैसे वो ताकत के शिखर पर पहुंचे और फिर कैसे उनका सब कुछ तबाह हो गया।
यानी एक राजवंश के उठने और गिरने की कहानी, लेकिन इसके पीछे का बड़ा आइडिया या संदेश क्या है? आपने शुरू में कहा था कि ये जिंदगी का फलसफा भी है।
हाँ, इसका सबसे गहरा और केंद्रीय संदेश बौद्ध धर्म की एक अवधारणा है, मुज्जो। मुज्जो मतलब क्षणभंगुरता, अनित्यता।
मुज्जो यानी कुछ भी परमानेंट नहीं है।
एग्जैक्टली, दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे वो कितनी भी बड़ी ताकत हो, शान शौकत हो, दौलत हो, सब कुछ बदलता है, खत्म होता है। कहानी की शुरुआती पंक्तियां ही इसी विचार को सामने रखती हैं।
मतलब ये कहानी हमें याद दिलाती है कि भाई ज्यादा घमंड मत करो, क्योंकि आज जो शिखर पर है कल वो नीचे भी आ सकता है।
बिल्कुल, ये बार बार दिखाती है कि अभिमान और अहंकार का अंजाम हमेशा बुरा होता है। लेकिन ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं, ये कहानी सिर्फ युद्ध और राजनीति का लेखा जोखा नहीं है।
अच्छा।
हाँ, ये मानवीय भावनाओं का एक गहरा समंदर है। इसमें आपको महत्वाकांक्षा दिखेगी, वफादारी दिखेगी, धोखा मिलेगा, करुणा महसूस होगी और दुख का अनुभव भी होगा। और ये उस दौर का आईना भी है जब जापान एक पुराने दरबारी समाज से निकलकर एक नई योद्धा केंद्रित सामंती व्यवस्था की तरफ जा रहा था।
चलिए अब कहानी के सफर पर चलते हैं। ये हेके कबीले का अर्श से फर्श तक का सफर कैसा था? शुरुआत तो जाहिर है शिखर से हुई होगी।
हाँ, कहानी का पहला हिस्सा मतलब पहली तीन किताबें हमें तायरा नो कियोमोरी को शिखर पर दिखाती हैं। वो एक मामूली समुराई से उठकर जापान का सबसे ताकतवर आदमी बन जाता है। उसका दरबार पर पूरा कब्जा है, यहाँ तक कि वो अपने नन्हे से पोते अंतोकू को सम्राट की गद्दी पर बिठा देता है। ताकत उसके सर चढ़कर बोल रही है, जिसे कहते हैं।
और यहीं से वो मशहूर कहावत आई थी, है ना, अगर तुम हेके नहीं हो तो तुम इंसान नहीं हो।
बाप रे, ये तो हद दर्जे का अहंकार दिखाता है। जाहिर है ऐसे रवैये से दुश्मन भी बहुत बने होंगे।
बिल्कुल, उनका ये अहंकार और विरोधियों के प्रति क्रूरता, जैसे एक शिश्नोतानी घटना हुई थी जिसमें साजिश करने वालों का सफाया कर दिया गया, इन सब चीज़ों ने उनके खिलाफ नाराजगी को बहुत हवा दी। ये उनके पतन के बीज थे एक तरह से।
अच्छा,
यहीं से कहानी दूसरे चरण में दाखिल होती है, करीब किताबें 4 से 6। जंग छिड़ जाती है। एक नाराज राजकुमार वो गेंजी कबीले को हेके के खिलाफ उठने का न्योता देता है और गेनपे युद्ध शुरू हो जाता है। 1180 से 1185 तक चलाइए।
और क्या क्योमोरी की कोई अपनी गलती इस आग को और भड़काती है?
हाँ, वो एक बहुत बड़ी गलती करता है। राजधानी को क्योटो से फुकुहारा ले जाने का फैसला, ये कदम बुरी तरह नाकाम होता है। और फिर हेके को पहली बड़ी हार मिलती है फुजीकावा की लड़ाई में।
फुजीकावा, उसमें क्या हुआ था?
कहते हैं कि उनकी सेना इतनी डरी हुई थी कि रात में पानी के कुछ पक्षियों के उड़ने की आवाज सुनकर ही उनमें भगदड़ मच गई।
क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ पक्षियों की आवाज से?
ये तो उनके गिरते हौसले की निशानी थी।
और क्योमोरी का क्या हुआ फिर?
कहानी में उसका अंत भी बड़ा नाटकीय दिखाया गया है। उसे एक भयानक जलन वाला बुखार होता है और वो तड़प तड़प कर मर जाता है। इसे उसके बुरे कर्मों का फल माना जाता है। और उसकी मौत के साथ ही हेके कबीला बिखरने लगता है। उनका सबसे मजबूत नेता चला गया था।
तो अब गेंजी कबीले की बारी आई होगी। कहानी के तीसरे हिस्से में क्या होता है? किताबें 7 से 9।
हाँ, अब पासा पलटता है। मिनामूतो कबीले के योद्धा सामने आते हैं, खासकर मिनामूतो नो योशिनाका। वो उत्तर से आकर हेके को करारी शिकस्त देता है, जैसे कुरीकरा की लड़ाई, जहां उसने रात में बैलों के सींगों पर जलती मशाले बांधकर उन्हें हेके सेना पर छोड़ दिया था।
अरे वाह, ये तो बड़ी फिल्मी तरकीब लगती है।
बिल्कुल, इस हार के बाद हेके को सम्राट अंतोकु और जापान की शाही निशानियों, तलवार, आईना और गहना के साथ राजधानी क्योटो छोड़कर पश्चिम की ओर भागना पड़ता है।
और फिर कहानी में एंट्री होती है एक और अहम किरदार की, मिनामोतो नो योशित्सु ने। सुना है वो कमाल का योद्धा था।
हाँ, योशित्सु ने बहुत काबिल रणनीतिकार। वो पहले अपने ही चचेरे भाई योशिनाका को रास्ते से हटाता है और फिर हेके का पीछा करता है। इचिनोतानी की लड़ाई में उसका कारनामा तो बहुत मशहूर है।
क्या किया था उसने?
उसने अपनी टुकड़ी के साथ एक सीधी खड़ी पहाड़ी से नीचे घोड़ों समेत छलांग लगा दी और पीछे से हेके पर हमला कर दिया। ये एक बिल्कुल चौंकाने वाली जीत थी।
घोड़ों समेत पहाड़ी से छलांग, कमाल है। लेकिन आपने कहा था कि कहानी में करुणा भी है, क्या वो इसी दौर में दिखती है?
बिल्कुल, इसी दौर की एक बहुत ही मार्मिक कहानी है अत्सुमोरी और कुमागाई की।
हाँ, ये नाम सुने हैं।
अत्सुमोरी एक बहुत युवा, खूबसूरत और बांसुरी बजाने वाला हेके राजकुमार था। कुमागाई एक अनुभवी गेंजी योद्धा। लड़ाई में कुमागाई उसे हरा देता है, लेकिन जब वो उसे मारने वाला होता है तो उसकी कम उम्र और मासूमियत देखकर उसका दिल पिघल जाता है। उसे अपना ही बेटा याद आ जाता है।
ओह
जी, सैनिक आ रहे होते हैं। कुमागाई को लगता है कि अगर वो उसे नहीं मारेगा तो दूसरे उसे शायद और बुरी तरह मारेंगे। तो भारी मन से वो अत्सुमोरी का सिर काट देता है, लेकिन उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने का वादा करता है।
ओह, ये तो दिल तोड़ने वाली बात है। ये युद्ध की क्रूरता और इंसानियत के बीच का द्वंद्व दिखाती है। यहाँ शायद वो मोनोनो अवारे वाली भावना आती होगी जिसके बारे में पढ़ा था।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मोनोनो अवारे का मतलब ही है चीजों की क्षण भंगुरता के प्रति एक गहरी, थोड़ी उदास सी संवेदनशीलता। जब कुमागाई अत्सुमोरी की जवानी, उसकी कला, उसकी निश्चित मौत को देखता है तो उसके मन में जो दर्द और करुणा का भाव उठता है वो मोनोनो अवारे ही है। ये सुंदरता में छुपे दुख को महसूस करना है।
समझ गई। तो इचिनोतानी के बाद क्या हेके पूरी तरह हार गए?
नहीं, अभी नहीं। कहानी के चौथे और आखिरी लड़ाई वाले हिस्से में, मतलब किताबें 10-11, वो पीछे हटते हुए याशिमा द्वीप पर जाते हैं, लेकिन योशित्सु ने वहां भी उन्हें हरा देता है। एक और मशहूर किस्सा यहीं का है।
अच्छा, कौन सा?
जब एक गेंजी तीरंदाज नासुनो योइची एक हेके जहाज के हिलते हुए मस्तूल पर रखे पंखे पर अचूक निशाना लगाता है, हवा में हिलते हुए पंखे पर।
वाह, कमाल की तीरंदाजी।
हाँ, और फिर आती है वो आखिरी लड़ाई, डैन्नोवोरा की समुद्री जंग,
शिमोनोसेकी स्ट्रेट में।
हाँ, वहीं। ये हेके का आखिरी दाम था। शुरू में समुद्री लहरें उनके पक्ष में थीं, लेकिन फिर ज्वार पलटता है और गेंजी सेना हावी हो जाती है। जब हेके को अपनी हार निश्चित दिखती है तो वो अपमानजनक बंदी जीवन जीने के बजाय मौत को चुनते हैं।
कई योद्धा और रानियां समुद्र में कूद जाते हैं।
और सबसे दुखद अंत तो शायद नन्हे सम्राट अंतोकु का हुआ।
हाँ, वो कहानी का सबसे मार्मिक पल है। कियोमोरी की विधवा यानी सम्राट की दादी उसे गोद में उठाती हैं और कहती हैं, चिंता मत करो, लहरों के नीचे भी एक राजधानी है, और उसके साथ समुद्र में कूद जाती है। जापान की पवित्र शाही तलवार भी उसी के साथ समुद्र में खो जाती है। हे के कबीले का इस तरह पूरी तरह विनाश हो जाता है।
रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना? युद्ध के बाद क्या हुआ, पांचवा हिस्सा?
नहीं, कहानी का पांचवा हिस्सा यानी किताब 12 और एक दीक्षा अध्याय युद्ध के बाद के हालात और उसके नतीजों पर गौर करता है। बचे हुए हे के नेताओं को सजाए मौत मिलती है। लेकिन विडंबना देखिए, इस युद्ध का सबसे बड़ा हीरो योशित्सुने, उसका अंत भी दुखद होता है।
उसके साथ क्या हुआ, उसे तो इनाम मिलना चाहिए था ना?
उसका अपना बड़ा भाई योरिटोमो, जो अब जापान का पहला शोगुन मतलब सैन्य शासक बन गया है, वो उसे अपनी सत्ता के लिए खतरा मानने लगता है।
अच्छा, अपने ही भाई को?
हाँ, वो योशित्सुने पर शक करता है, उसे भगोड़ा घोषित कर देता है और आखिरकार उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर देता है। सत्ता की राजनीति कितनी क्रूर हो सकती है, ये इसका एक उदाहरण है।
ये तो वाकई दुखद है। जीत के बाद भी शांति नहीं मिली उसे। तो क्या कहानी का अंत निराशाजनक है?
पूरी तरह नहीं। कहानी एक आध्यात्मिक मोड़ लेती है आखिर में। कियोमोरी की बेटी और सम्राट अंतोकु की माँ महारानी किनरे मोनेन, जो युद्ध में बच गई थी, वो एक बौद्ध भिक्षुणी बन जाती हैं।
अच्छा।
वो अपना बाकी जीवन राजधानी के पास एक शांत मठ में बिताती हैं और हेके और गेंजी दोनों तरफ के मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हैं। कहानी का अंत युद्ध के शोर से हटकर शांति, करुणा और मुक्ति की तलाश पर केंद्रित हो जाता है।
वाह, ये तो कमाल का सफर है। सत्ता के शिखर से विनाश और फिर आध्यात्मिकता की ओर। चलिए अब इस कहानी से निकलने वाले मुख्य संदेशों या थीम्स को थोड़ा और समेटते हैं। कौन कौन सी मुख्य बातें हैं?
सबसे पहली और सबसे अहम थीम तो वही है, मोजो यानी क्षणभंगुरता। कहानी की शुरुआत में ज्ञानमठ की घंटियों का जिक्र आता है, जिनकी आवाज यही कहती है कि दुनिया में सब कुछ नश्वर है। ये पूरी कहानी इसी विचार के इर्द गिर्द घूमती है।
हाँ, ये तो बिल्कुल साफ है।
चाहे हेके की ताकत हो या जीवन की खुशियां और दुख, सब अस्थाई हैं।
और दूसरा बड़ा सबक है अभिमान का पतन, हेके का घमंड, उनका वो सोचना कि वो सबसे ऊपर है और कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता, यही उनके विनाश का मुख्य कारण बना। ये आज भी उतना ही सच है ना, चाहे वो राजनीति हो, बिजनेस हो या हमारी अपनी जिंदगी।
बिल्कुल। तीसरा है कर्म का सिद्धांत, जिसे जापानी में इंगा कहते हैं, मतलब आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे।
कर्मफल।
हाँ, कर्मफल। कियोमोरी की दर्दनाक मौत हो या योरिटोमो का अपने ही भाई के साथ किया गया बर्ताव और फिर शायद उसके अपने वंश का जल्दी खत्म हो जाना, कहानी दिखाती है कि कर्मों का फल मिलता है, चाहे देर से मिले।
एक और बात जो मुझे महसूस हुई वो है समुराई कोड यानी बुशीडो, वफादारी, सम्मान, बहादुरी और युद्ध की असलियत के बीच का तनाव, जैसे कुमागाई की कहानी में।
हाँ बिल्कुल।
उसका फर्ज उसे अत्सुमोरी को मारने को कहता है, लेकिन उसका दिल करुणा से भरा है। ये दिखाता है कि आदर्श अपनी जगह हैं, पर युद्ध की कीमत इंसानों को चुकानी पड़ती है। बहुत मार्मिक है ये।
बिल्कुल। और इसी से जुड़ी है पांचवी थीम, हारने वालों के प्रति सहानुभूति और मुक्ति की तलाश। ये कहानी सिर्फ विजेताओं का जश्न नहीं मनाती, ये हमें हेके के दुख को भी महसूस कराती है। और अंत में महारानी किनारे मोनिन का प्रार्थना में सुकून पाना दिखाता है कि असली शांति शायद सत्ता और संघर्ष में नहीं, बल्कि माफी, करुणा और आध्यात्मिक रास्ते पर चलने में है।
तो संक्षेप में कहें तो क्षणभंगुरता अहंकार का नतीजा, कर्मफल कर्तव्य बनाम करुणा, और सहानुभूति व मुक्ति, ये हैं इस कहानी के बड़े सबक।
हाँ, ये वो धागे हैं जिनसे ये पूरी कहानी बुनी गई है, ऐसा कह सकते हैं।
कहानी में कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार हैं जो दिमाग में अटक जाते हैं। सीधे सीधे कोट करना शायद मुश्किल हो, पर वो भाव क्या है जो याद रह जाते हैं।
सबसे पहले तो वही शुरुआती पंक्तियां जो ज्ञानमठ की घंटियों के बारे में हैं, उनका सार यही है, दुनिया की हर चीज बदलती है, ताकतवर का पतन होता है, घमंडी का अंत निश्चित है। ये पूरी कहानी का निचोड़ है एक तरह से।
और दूसरा?
दूसरा वो हेके का घमंड वाला विचार, जो हेके नहीं वो इंसान नहीं। ये दिखाता है कि कैसे सत्ता का नशा इंसान को अंधा बना देता है, उसे दूसरों से और सच्चाई से कितना दूर कर देता है।
हाँ, ये बहुत डरावना है। और तीसरा?
और तीसरा कुमागाय की वो भावना अत्सुमोरी के लिए। उसका सार कुछ ऐसा है कि कैसी बेरहम किस्मत है, मेरा फर्ज है तुम्हें मारना, पर मेरा दिल तुम्हारे लिए रो रहा है। मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा। ये कर्तव्य के बोझ और इंसानियत की पुकार के बीच फंसे एक योद्धा का दर्द दिखाता है। ये बताता है कि युद्ध में जीत की भी भारी कीमत चुकानी पड़ती है।
इसे मायने रखती है, हम इससे अपनी जिंदगी में क्या सीख सकते हैं?
कई बातें सीख सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी सबक है सफलता में विनम्रता। चाहे कोई किसी कंपनी का सीईओ हो, नेता हो, या अपने क्षेत्र में कामयाब हो, हेके की कहानी एक चेतावनी है। ताकत और सफलता हमेशा नहीं रहती, तो घमंड से बचना चाहिए, दूसरों की सुनना चाहिए, जमीन पर पैर रखने चाहिए।
बिल्कुल। और दूसरा, शायद बदलाव को स्वीकार करने का हुनर।
हाँ, बहुत अहम। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। हे के कबीला बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाया और तबाह हो गया। कहानी हमें सिखाती है कि हालात बदलने पर रोने या लड़ने के बजाय हमें लचीला बनना चाहिए, नई परिस्थितियों को समझना चाहिए और समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए, जिसे आजकल रेजिलियंस कहते हैं।
रेजिलियंस, सही। और तीसरा?
तीसरा, हमारे फैसलों के नैतिक परिणाम। कर्म का सिद्धांत आज भी लागू होता है ना? हमारी साख, लोगों का भरोसा, ये सब हमारे कामों से बनता या बिगड़ता है। शॉर्टकट या गलत तरीकों से मिली कामयाबी टिकती नहीं, देर सवेर हिसाब देना पड़ता है।
और चौथा, शायद अपने विरोधियों या जिनसे हम असहमत हैं उनके प्रति भी थोड़ी सहानुभूति रखना।
हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी हेके का दुख दिखाकर हमें सिखाती है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिनसे हमारा मतभेद है वो भी इंसान है, उनकी भी अपनी कहानी है। शायद ये हमें अपने झगड़ों को बेहतर तरीके से सुलझाने में मदद कर सकता है।
और आखिरी बात
कि असली खुशी या संतुष्टि कहाँ मिलती है। कहानी का अंत इशारा करता है कि यह सत्ता, पैसा या शोहरत जैसी बाहरी चीजों में शायद उतनी नहीं है जितनी शायद करुणा, मन की शांति और दूसरों की भलाई करने जैसे अंदरूनी मूल्यों में है। ये चीजें ज्यादा स्थायी हैं।
वाह, वाकई बहुत गहरे सबक हैं इसमें। अगर आपको इस पूरी चर्चा से कोई एक बात चुननी हो जो सबसे ज्यादा असरदार लगी या जिसने सबसे ज्यादा चौंकाया, तो वो क्या होगी?
मेरे लिए शायद ये बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और प्रभावशाली है कि इतनी भयानक मारकाट और राजनीतिक उथल पुथल वाली कहानी का अंत इतनी गहरी आध्यात्मिकता और करुणा पर होता है। महारानी किनरेमोनेन का किरदार, जो सब कुछ खोने के बाद प्रार्थना में शांति पाती हैं, ये दिखाता है कि त्रासदी से भी कुछ सार्थक निकल सकता है। ये हार जीत से परे देखने की बात करता है।
हाँ, ये वाकई खास है। और मेरे लिए शायद वो मुझो यानी क्षण भंगुरता का विचार ही सबसे ज्यादा असरदार है। ये याद रखना कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, हमें हर पल की कीमत समझने में मदद करता है। यह हमें विनम्र बनाता है और शायद थोड़ा कम तनाव लेने के लिए भी प्रेरित करता है कि ठीक है, चीजें बदलेंगी ही। और हाँ, जिस तरह ये कहानी किसी एक लेखक ने नहीं बल्कि गा गा कर लोगों ने जिंदा रखी, ये भी कमाल लगता है।
तो श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वह खुद सोच सकते हैं। अक्सर कहा जाता है कि इतिहास विजेता लिखते हैं, पर क्या हेके जैसी हारने वालों की कहानियां हमें जिंदगी के स्थायी सत्यों के बारे में ज्यादा नहीं सिखा सकती?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।